ओम शांति। राजयोग के द्वितीय सत्र में आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 86 वर्षों से समाज की आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का कार्य कर रही है और शुरू से ही हमारी सेवा के मुख्य दो साधन हैं, सहज ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग। ईश्वरीय ज्ञान के अंतर्गत जीवन के मूल सनातन सत्यों का ज्ञान दिया जाता है, जिन सत्यों पर हमारा जीवन चलता है और ये संसार का खेल चलता है। राजयोग वो विधि है, पद्धति है, जिससे हम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मन बुद्धि को शुद्ध शक्तिशाली एकाग्र बना सकते हैं। योग का आधार आत्मचिंतन है, जिसके बारे में कल आप सभी ने सीख लिया है। योग अभ्यास करने वाले हम स्वयं कौन हैं? स्वयं का सही परिचय आप सभी ने प्राप्त किया है। इस प्रथम लेसन से अगर तीन अभ्यास प्रतिदिन बार बार आप करेंगे तो बहुत जल्दी स्वयं के प्रति खुद को एकाग्र कर सकेंगे, अंतर्मुखी बन सकेंगे, कर्मेंद्रियों पर संयम आ जाएगा। तो पहला अभ्यास है आत्मस्मृति में रहना। उठते बैठते चलते फिरते देखते बोलते सोचते हमें मन ही मन ये अवेयरनेस रहे कि मैं एक आत्मा हूं। चैतन्य शक्ति हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप। बुद्धि में स्पष्ट रहे कि शरीर तत्वों से बना है, जड़ है। मैं आत्मा चैतन्य हूं, शक्ति हूं। दूसरा अभ्यास आत्मा दृष्टि का करें। हम जिससे भी मिलें, जिसको भी देखें, बातचीत करें, हम उनके मस्तक में देखें कि वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं। हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई है। हमें स्पष्ट रहे कि शरीर से कोई स्त्री है, शरीर से कोई पुरुष है। मैं स्त्री हूं गलत बात है, मैं पुरुष हूं ये रॉन्ग कॉन्शियसनेस है। राइट कॉन्शियसनेस ये ही है कि मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा है। तो हम एक दो को रूहानी दृष्टि से देखें, देह दृष्टि से नहीं। और तीसरा अभ्यास है आत्म धर्म में स्थित होकर हर कर्म करना। प्रत्येक आत्मा का स्वधर्म शांति और पवित्रता है, प्रेम सुख आनंद है, ज्ञान और शक्ति है। ये हमारी ओरिजिनल नेचर है। हम ये लक्ष्य रखें मुझे प्रत्येक कर्म शांति से, शुद्धि से, सोच समझ कर ज्ञान स्वरूप बनकर करना है। मुझे कोई भी कर्म गुस्से से, स्वार्थ भाव से, जल्दबाजी में नहीं करना है। तो हम अपने हर कर्म को यथार्थ एक्यूरेट कर सकेंगे। तो आत्मचिंतन राजयोग की आधारशिला है। लेकिन योग दो सत्ता के मिलन को कहा जाता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसे योग कहते हैं। तो अब हमें ये जानने की जरूरत है कि वो परम शक्ति परमात्मा कौन है, जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते रहे। कितना भी कोई नास्तिक हो, जीवन में ऐसा समय आता है जब जाने अनजाने उस परम शक्ति को ही हम याद करते हैं, जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, प्रभु, परमेश्वर कहकर याद करते रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन कहते हैं, सबका मालिक एक कहते हैं। और ये विवेक की बात भी है कि परम सुप्रीम ऊंचे ते ऊंच एक ही हो सकता है। फाइनल अथॉरिटी, अल्टीमेट अथॉरिटी एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकती, अनेक नहीं हो सकती। जब परमात्मा एक है तो उनका सत्य नित्य परिचय भी एक ही होना चाहिए। आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, अनेक मते हैं। यहां आप जो बैठे हैं, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि परमात्मा कौन है, क्या आप सबके तरफ से एक जवाब आएगा? आएगा? हाँ, आएगा? नहीं। हर एक अपनी अपनी भावना, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार बताएंगे। आज एक परमात्मा के बारे में ऑलरेडी अनेक मतें हो चुके हैं। जिसको श्री राम में भावना है, वो कहते हैं श्री राम ही भगवान है। जिनको श्री कृष्ण से प्यार है, वो कहते हैं श्री कृष्ण ही परमात्मा है। कोई नेचर को गॉड समझते हैं, कि चारों ओर प्रकृति का जो अपार सौंदर्य फैला हुआ है, ये प्रकृति ही परमात्मा है। कोई आत्मा को ही परमात्मा समझते, प्रैक्टिकली अपने आप को भगवान कहलाते हैं, पूजा करवाते हैं, शिवो हम ब्रह्मो हम कहते रहते हैं। कोई परमात्मा को सर्वव्यापी समझते हैं, तेरे में, मेरे में, कण कण में, घोड़े में, गधे में, सांप में, सुअर में, हरेक में भगवान की भावना रखते हैं। तो आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, अनेक मतें हैं। ये अनेक मतें ही सिद्ध करती हैं कि परमात्मा का सत्य परिचय हम नहीं जानते हैं। अनेक मतें, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय मठ पंथ बन गए हैं, फिर भी परमात्मा कौन है, इस प्रश्न का सही उत्तर मिला ही नहीं है। तो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से उनका सत्य परिचय हम आत्माओं को दिया है। मैं सबसे पहले वो परिभाषा आपके सामने रखूंगी कि परमात्मा का सत्य परिचय किसको कह सकते हैं, क्या सही डेफिनेशन है। मैं पांच बातें आपके सामने रखूंगी जिससे हम वेरीफाई कर सकें के सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते हैं। सबसे पहली बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जिसे सभी मान्य करें। कुछ लोग माने, दूसरे कुछ ना माने, उसको परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा कोई एक धर्म, कोई एक देश, कोई एक जाति, समाज के पिता नहीं। परमात्मा समग्र विश्व के पिता है, सर्व आत्म आत्माओं के परम पिता है। इसलिए परमात्मा का सत्य परिचय उसे ही कह सकते हैं जिसे सर्वधर्म मान्य करे। दूसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हो। हम सब जानते हैं कि जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होती है। जो शरीर धारण करते हैं वे शरीर छोड़ते भी हैं। जो जन्म लेते हैं प्रकृति के बंधन में बंधते हैं। शरीर क्या है? प्रकृति है ना, पांच तत्वों से बना है। जो जन्म लेते हैं शरीर के प्रकृति के बंधन में बंधते हैं, स्थल और काल के लिमिटेशन में आते हैं। जो जन्म लेते हैं वो देह संबंध में बंधते हैं। बच्चा पैदा होते ही संबंध में बंध जाता है, वो किसी का बेटा है, पोता है, भाई है, संबंधों के बंधन में बंधते हैं। जो जन्म लेते हैं कर्म बंधन में बंधते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर रह नहीं सकता है। इसलिए कर्म बंधन में बंधते जाते हैं। अंडरस्टूड है, वे सुख दुख के बंधन में बंधते हैं, क्योंकि अच्छा बुरा साधारण जो कुछ हम करते हैं उसका फल हमें ही भोगना होता है। तो हम सुख दुख के बंधन में बंधते जाते हैं। इसलिए परमात्मा उसको कहते हैं जो सुख दुख के कर्म के संबंध के प्रकृति के बंधनों से मुक्त है। यही कारण है परमात्मा को सदा मुक्त कहते हैं, सदा स्वतंत्र कहते हैं। और हम सभी भी परमात्मा से सदा मुक्ति मांगते हैं। हमें दुखों से छुड़ाओ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, हमें भव के फेरे से छुड़ाओ। अंडरस्टूड है, जो स्वयं मुक्त होगा वो ही तो हमें मुक्ति दे सकेगा ना। इसलिए जन्म मरण के चक्र में आने वाली शरीरधारी मनुष्य आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। तीसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो स्वयं परम है, उनके ऊपर और कोई आत्मा नहीं है, उनके कोई माता पिता गुरु शिक्षक शेठ स्वामी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर और कोई आत्मा ही नहीं है। इसलिए परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि वे परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। हम उनको पिताओं का पिता, शिक्षकों का शिक्षक, गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, नाथों का नाथ कहते हैं। वो ही सर्वोच्च, फाइनल, अल्टीमेट ऑथोरिटी है। चौथी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सदा अपनी स्थिति में, गुणों में, कर्तव्यों में परम है, सर्वोच्च है। ऐसे नहीं कि अभी परम है, धीरे धीरे मध्यम होते जाएंगे, अधम होते जाएंगे, नहीं। हम मनुष्य आत्माएं समय और प्रकृति के बंधन में आकर परिवर्तन को प्राप्त होते हैं। हमारे गुण, कर्म, स्थिति बदलते रहते हैं। परमात्मा सदा पावन है, सदा शिव है, सदा प्यार का सागर है, वो सदा मुक्त है। केवल परमात्मा की महिमा में ही सदा, फॉर एवर शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। हमारी तो हर घड़ी स्थिति, मूड, व्यवहार बदलते रहते हैं। इसलिए परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सदा अपने गुणों में, अपनी परम स्थिति में स्थित है, एक रस है, सर्वोच्च है, अपरिवर्तनशील है। पांचवी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सर्व ज्ञाता है, सदा दाता है। सर्वज्ञाता माना सारे ही यूनिवर्सल ट्रुथ्स को जानते हैं और वे ही आकर सत्य बताते हैं। इसलिए हम कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, क्योंकि यूनिवर्स के सारे ट्रुथ्स वो ही आकर रिवील करते हैं, हमें बताते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को, आलोक परलोक को जानते हैं। इसलिए ही हम परमात्मा को ही कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सतगमय, क्योंकि परमात्मा ही हमें अज्ञान अंधकार से निकाल ज्ञान प्रकाश में ले आते। हम आत्माओं को जागृत करते हैं, वो ही असत्य से सत्य की ओर ले चलते हैं। इसलिए परमात्मा को हम कहते हैं कि वे सर्वज्ञ है। और हम आत्माओं के लिए हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ है, हम जानते हैं और भूल जाते हैं। हम स्मृति विस्मृति को प्राप्त होते रहते। इसलिए परमात्मा सर्वज्ञाता है और सदा दाता है, सदा दाता है। इसलिए भक्ति में भी हम महिमा करते हैं शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सदगति दाता। वो सदा दाता है, देते ही रहते हैं। आगे हम देखेंगे परमात्मा की महिमा में, वो सदा दाता है। हम मनुष्य आत्माएं सदा दाता है नहीं है? बेशक हम मनुष्य आत्माएं पहले दाता थे, देवता थे, इसलिए भारत को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है, दाताओं की भूमि। तो पहले हम देवता थे, दाता थे, इसलिए देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं? दाता दाता वरदाता बताते हैं। लेकिन आज कलयुग के अंत हम देवता नहीं रहे हैं। आज हम क्या बन गए हैं, क्या बन गए हैं? देवता नहीं रहे हैं, लेवता बन गए, लेने वाले बन गए हैं। हमें हरेक से चाहिए चाहिए चाहिए, हरेक से अपेक्षाएं बनी रहती। हम निस्वार्थ भाव से बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। परमात्मा सदा दाता है, तो परमात्मा के सत्य परिचय की ये परिभाषा की पांच बातें आपके सामने रखी। अब आप विवेक से सोचिए सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते। भक्ति में तो हम भावना से, श्रद्धा से अनेकों को भगवान समझते रहे, मानते रहे, पूजते रहे हैं, परंतु परमात्मा केवल भावना का, मान्यता का विषय नहीं है। परमात्मा सत्य है, उसी यथार्थ रूप से हमें जानना है, पहचानना है। इसलिए परमात्मा के सत्य परिचय की परिभाषा की पांचों ही बातें बुद्धि में रखकर अब आप बताइए, क्या आप और मेरे जैसे साधारण मानव शरीरधारी आत्माओं को परमात्मा कह सकते हैं, कह सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहली बात बुद्धि में स्पष्ट कर लीजिए कि कोई भी देहधारी मनुष्य आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। हम मनुष्य आत्माएं परमात्मा जैसे बन सकते हैं, परमात्मा ही नहीं बन जाते हैं। एक बेटा अपने पिता जैसा रूपवान, गुणवान, ज्ञानवान, विद्वान, धनवान, पहलवान बन सकता है, फिर भी पिता पिता है और पुत्र पुत्र है। रचयिता रचयिता है, रचना रचना है। हम मनुष्य आत्माएं परमात्मा जैसे बन सकते हैं, परमात्मा ही नहीं बन जाते हैं। इसलिए इस भावना को करेक्ट करिए और सत्य को समझ लीजिए। हम मनुष्य आत्माओं को परमात्मा नहीं कह सकते। अंडरस्टूड है। दूसरी बात, जो भी साधु सन्यासी है, ऋषि मुनि है, गुरु विद्वान पंडित आचार्य संत महंत जो भी हैं, हम उनको महात्माएं कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। सत्य हम सब जानते हैं, परमात्मा की याद से, योग साधना से ही वे महान बनते हैं। वे महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। परमात्मा का सत्य परिचय न जानने के कारण कोई थोड़ी भी रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते हैं, लोग उनको ही भगवान समझने लगते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, परमात्मा कोई अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते हैं। इसलिए हम इन साधु संतों को बेशक महात्माएं कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। तीसरी बात, जो भी धर्म स्थापक हुए हैं, इतिहास आप सभी जानते हैं, कौन कौन धर्म स्थापक हुए हैं बताइए। हाँ, ये जिन्होंने आकर अपने अपने धर्म की स्थापना का कार्य किया, चाहे इस्लाम के अब्राहम हुए, मोहम्मद पैगंबर साहब हुए, चाहे गौतम बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, जीसस क्राइस्ट हुए, शंकराचार्य जी हुए, गुरु नानक जी हुए, जो भी धर्म स्थापक हुए हैं वे धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। इन धर्म स्थापकों ने स्वयं ही सत्य कहा है कि हम उस गॉड के मैसेंजर हैं, हम उस खुदा के पैगंबर हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं। इन्होंने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा है, ये उनके फॉलोवर्स हैं जो आगे चल के समय बीतने पर उस परम शक्ति परमात्मा को भूल जाते हैं और अपने अपने धर्म स्थापक में केंद्रित हो जाते हैं। तो सत्य ये है कि ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। और चौथी बात, बहुत विवेक से और निष्पक्ष भाव से समझनी है कि हिंदू भाई बहने जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, कितने देवी देवताओं को मानते हैं, कितने देवी देवताओं को मानते हैं? जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। इसलिए देखिए, इन देवी देवताओं को सभी धर्म की आत्माएं नहीं मानती हैं। आप और धर्म की बात छोड़िए, क्या हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय सभी देवी देवताओं को मानते हैं? मानते हैं? नहीं मानते। जब ये देवी देवताएं हिंदू धर्म के ये इतने संप्रदाय मठ पंथ बने ही क्यों? इन भावनाओं और मतों में क्योंकि सत्य पता नहीं था। हम देवी देवताओं के जन्म की, जीवन की, इवन कईयों के मृत्यु की पूरी कथाएं सुनाते हैं, गाथाएं बताते हैं। हम इन देवी देवताओं के माता, पिता, बंधु, गुरु, सखा, पत्नी, बच्चे बताते हैं। उनको देह संबंधों में बंधे हुए बताते। हम इन देवी देवताओं को श्रेष्ठ कर्म करते हुए बताते कि वे अवतरित हुए ही असुरों का संहार करने, दुखियों को सुखी बनाने, नरक को स्वर्ग बनाने। हम उनको श्रेष्ठ कर्म करते हुए दिखाते और उनके श्रेष्ठ कर्मों के फल स्वरूप हम इन देवी देवताओं को स्वर्गीय सुखों को भोगते हुए दिखाते। आज तक भी मंदिरों में इन देवी देवताओं का कितने न सोने चांदी हीरों के बने हुए वस्त्र अलंकार आभूषणों से उनको श्रृंगारित किए जाते हैं, जो उनके स्वर्गीय सुखों की प्रतीक रूप है। हम इन देवी देवताओं को सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान बताते हैं, हीरे रत्न से जड़ित सुवर्ण ताज पहनाए हुए दिखाते हैं, जो सत्ता का प्रतीक है। तो जो भोग है उनको परमात्मा नहीं कह सकते हैं। परमात्मा की महिमा में कौन से विशेषणों का उपयोग हम करते हैं? हम उनको अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, निराकार, निरंजन कहते हैं। गीता में आप पढ़िए परमात्मा की महिमा में इन विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए ऐसा कौन सा स्वरूप है जिसे सभी धर्म की आत्माएं मान्य करती हैं, जिनके कोई माता पिता नहीं बताए गए हैं, जिनको स्वयंभू कहा गया है, ऐसा कौन सा स्वरूप है? है कोई ऐसा स्वरूप जिसे सभी धर्म की आत्माएं मानते? तो देखो, मुंझने की बात नहीं है। परमात्मा को पहचानना सबसे आसान है। परमात्मा शब्द ही परमात्मा का सत्य परिचय देता है। संधि विच्छेद करिए, परमात्मा मीन्स परम आत्मा। सिंपल बात है, सुप्रीम सोल कहते हैं। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी रूप से ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा रूप से परम नहीं है, रूप ज्योति बिंदु है, गुणों के सिंधु है। परमात्मा अपने गुणों से, कर्तव्यों से, अपनी स्थिति से परम ऊंचे से ऊंच है। इसलिए जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। और इस चित्र में आप देखिए, परमात्मा का ये दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप विश्व के मुख्यतः सभी धर्मों को मान्य है। हिंदू भाई बहने ज्योति बिंदु परमात्मा को ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। आप सब जानते हैं भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हैं। शिवलिंग शिवालय हर शहर, गांव, गली गली, इवन जंगलों में भी शिवालय पाए जाते हैं। परमात्मा इतने बड़े लिंगाकार नहीं है, ये भक्ति में पूजन के लिए बनाया गया प्रतीक है। जैसे देवी देवताओं की शरीरधारी प्रतिमाएं हैं, परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, पूजन के लिए उनका बड़ा यादगार प्रतीक शिवलिंग ज्योतिर्लिंग बनाया गया। भारत में सोमनाथ, अमरनाथ, काशी विश्वनाथ, पशुपतिनाथ नेपाल में, ये सब यादगार बने हुए हैं। रामेश्वर में आप देखिए श्री राम को भी शिवलिंग का पूजन करते हुए बताया है। वृंदावन गोपेश्वर में आप जाएंगे श्री कृष्ण को भी शिव के आगे नमन करते हुए बताया है। एक और विवेक की बात आपको बताते हैं, इवन शंकर जी को भी शिवलिंग के आगे ध्यान अवस्था में बताते हैं। अंडरस्टूड है, परमात्मा को तो ध्यान करने की, पूजन करने की, नमन करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सुप्रीम अथॉरिटी है। हम शंकर जी को कहते ही हैं जोगी तपस्वी, जरूर उनके, उन्होंने किसका ध्यान किया, उनके ऊपर कोई परम शक्ति है जिसकी ध्यान स्थिति में वो बैठे हैं, वो है परम चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु परमात्मा जिसके ध्यान में वो बैठे हैं। इसलिए परमात्मा को देवों का देव, त्रिदेव रचयिता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव जो आदि है, त्रिदेव के भी रचयिता वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा है। इसलिए ज्योतिर्लिंग शिवलिंग पर आप देखिए तीन रेखा त्रिपुंड करते हैं और ऊपर बिंदु किया जाता है। त्रिदेव रचयिता ज्योति बिंदु परमात्मा है। मुस्लिम भाई बहने भी निराकार को ही मानते हैं, इसलिए वे कहते हैं अल्लाह नूर है। नूर मीन्स प्रकाश, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। हिंदी भाषा में हम कहते हैं परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। वे अपनी अरबी भाषा में कहते हैं नूरे इलाही। परमात्मा ये भौतिक प्रकाश बिंदु नहीं है। इलाही मीन्स अलौकिक, अभौतिक। परमात्मा दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसको वो कहते हैं नूरे इलाही। जापान के बौद्धिस्ट, विशेष करके जो महायान पंथी बौद्धिस्ट हैं, वे परमात्मा के ज्योति स्वरूप का लिंगाकार प्रतीक सामने रखते हैं, उनसे ध्यान केंद्रित करते हैं। उस शिवलिंग आकार के प्रतीक को वे अपनी जैपनीज लैंग्वेज में कहते हैं चिनकानशेकी, जिसका अर्थ है निराकार शांति दाता। हम गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को ध्यान अवस्था में दिखाते हैं, वो किसके ध्यान में बैठे हैं। उस ध्यान अवस्था में ही बुद्धत्व प्राप्त प्राप्त हुआ वो किससे प्राप्त हुआ? वो है परम चैतन्य शक्ति परमात्मा। जीसस क्राइस्ट ने भी स्पष्ट कहा है, गॉड इज लाइट, आई एम ए सन ऑफ गॉड। उन्होंने अपने आप को गॉड नहीं कहा है, गॉड को लाइट कहा है। इसलिए क्रिश्चियन भाई बहने मोमबत्ती जलाकर प्रेयर करते हैं। गुरु नानक जी ने एक निराकार की ही महिमा गाई है, एक ओमकार निराकार सतनाम करता पुरुष, निर्भय निर्वैर अयोनिज, एक निराकार की ही उन्होंने महिमा की। तो विश्व के जो भी मुख्यतः धर्म हैं, इवन मैं आपको बताऊं पारसी भाई बहने, वो भी आतश परमात्मा के ज्योति स्वरूप की याद में आतश अग्नि की पूजा करते हैं। यहूदियों को आप देखिए, वे भी एक उनके जो हजरत मूसा का इतिहास आप पढ़िए, उनको प्रथम साक्षात्कार ज्योति का हुआ था। तो विश्व के जो भी मूल धर्म स्थापक हैं, इन सब का मूल इशारा एक ही है कि परमात्मा एक है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको हमारे जैसा शारीरिक आकार नहीं है, इसलिए हम मनुष्यात्माओं की तुलना में, देवात्माओं की तुलना में उनको निराकार कहा जाता है। उनका अपना दिव्य आकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनका अपना दिव्य नाम कल्याणकारी शिव है। हमारे नाम शरीर से हैं, परमात्मा का नाम गुणों से हैं, उनके श्रेष्ठ कर्तव्यों से हैं। भक्ति में उनकी अपार महिमा अनेक नामों से हम करते हैं, सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, भोलानाथ, पशुपतिनाथ, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर, इनके अनेक गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम हैं। पर है तो सारे शिवालय न, उनका मूल नाम शिव है। वो सारे विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं कल्याणकारी शिव, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहकर भी हम याद करते हैं। यहां हम उस शिव परमात्मा को प्यार से शिव बाबा कहते हैं। बाबा मीन्स बाबा माना पिता, पिता को बाबा कहा जाता है। कोई साधु बाबा की बात नहीं है, शिव बाबा मीन्स शिव पिता। हम सब के लिए अति गर्व और खुशी की बात है कि परमात्मा हमारा पिता है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। खुशी है सबको, हाँ? देखो सब नहीं बोल रहे, हाँ? आज एक दुनियावी ऑफिसर, मिनिस्टर, उद्योगपति के बेटे को कितना नशा होता है कि पता है मेरे पिता कौन है, मैं किसका बेटा हूं। हमें खुशी है हम भगवान के बच्चे, क्यों नहीं है? देखो सब खुशी से क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हम सिर्फ मानते हैं, फॉलो नहीं करते। हम यथार्थ रूप से जानते नहीं हैं, मानते हैं, पूजते हैं, पर यथार्थ रूप से जान पहचान कर संबंध जोड़ते नहीं हैं, फॉलो नहीं करते। आज परमात्मा के लिए हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। क्या हम अपने आप को ईश्वरीय संतान कहलाने योग्य हैं? वो परमात्मा के गुणों को हम फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ मानकर पूजकर खुश हो जाते हैं। इसलिए यहां हम ये सिखाते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, हमारे पिता सत्य ज्ञान के सागर है, सर्व गुणों के सागर है। महिमा हम गाते हैं, तू प्यार का सागर है, शांति दाता है, सुख करता दुख हरता है, सदा पावन पतित पावन है, सर्वशक्तिमान सर्व के सदगति दाता है। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर परमात्मा के हम बच्चे हैं, हम कैसे होने चाहिए, हम कैसे होने चाहिए? हाँ? पिता ज्ञान गुण शक्तियों का सागर, अखुट भंडार दाता, हमें भी उनके जैसा बनना है। भाइयों और बहनों, यहां हम उस पिता से योग लगाते हैं, हम उनको याद करते हैं, हम फिर खुद को समझाते हैं कि ऐसे पिता के बच्चे हम कितने दिव्य होने चाहिए, महान होने चाहिए। हमें बनना है, सिर्फ पूजा पाठ करके खुश नहीं होना, हमें भी ऐसा पवित्र दिव्य बनना है। इसलिए हम साइलेंस में बैठकर उनका चिंतन करते हैं और खुद को रियलाइज कराते हैं हमें ऐसा बनना है। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर परमात्मा, कोई अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते हैं, वो तो मनुष्य गुरु भी करते हैं। कई सोचते हैं परमात्मा है हमें बीमार से ठीक कर दे, हम नापास हुए हैं पास कर दे, हमें नुकसान हुआ है नफा कर दे। ये परमात्मा का कार्य नहीं है। ये तो मनुष्यात्माएं महात्माएं भी करते हैं, परमात्मा वो कार्य करते हैं जो और कोई नहीं कर सकता है। वो कार्य है वे हमें पतित से पावन बनाते हैं। चित्र में नीचे बताया है कि जब सारा विश्व विकारों के पंजे में फंस जाता है, सब मनुष्य आत्माएं पतित तमो प्रधान बन जाती हैं, तब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, सत्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं, उस ज्ञान और योग बल से हमें पावन योगी बनाते हैं। वे हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। आज हम मनुष्य आत्माएं विकारों बुराइयों के वश पतित भ्रष्ट बन गए हैं। कहते हैं ना, मानव मानव नहीं रहा है, दानव बन गया है। ऐसा नहीं है देवताएं कोई आसमान में रहते हैं, काल्पनिक है। असुर पाताल में रहते हैं, कोई अलग योनि के भयानक प्राणी है। नहीं भाइयों और बहनों, यह संसार ही स्वर्ग था जब हम मनुष्य आत्माएं ही देवी देवता थे। पवित्रता और दिव्य गुणों से जब संपन्न थे, हम ही देवता गाए गए, संसार स्वर्ग कहा गया। जन्म मरण में आते आते पवित्रता और दिव्य गुण गंवा दिए, हम साधारण मनुष्य आत्मा बन गए। देहाभिमान में आकर हम मनुष्य आत्माएं विकारी बन गए, विकार व्यसन अवगुणों के स्वरूप बन गए, तो आज हम ही असुर बन गए। हम जब गुस्सा करते हैं, अहंकार दिखाते हैं, जब हम वैर द्वेष दुश्मनी में आ जाते हैं, उस समय कभी अपना चेहरा आईने में देखा है? देखा है? उस समय हम कैसे दिखते हैं? हम ही तो असुर बन गए हैं, पर हम रियलाइज नहीं करते। मिथ्या अभिमान हमें आ गए। ऐसे असुर मनुष्य आत्माओं को परमात्मा आकर सत्य ज्ञान और योग से पवित्र योगी बनाते हैं। जो अभी परमात्मा के आदेश पर अपने जीवन को पवित्र योगी बनाते हैं, वे ही सतयुग में देवी देवता बनते हैं। इसलिए इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य है हमें मनुष्य से देवता बनना है। परमात्मा संसार को स्वर्ग बनाते हैं। आज विश्व नरक बन गया है। दुख अशांति विकारों बुराइयों से ग्रसित हो गया है। इस कलियुगी नरक को परमात्मा आकर सतयुगी स्वर्ग बनाते हैं। ये है परमात्मा का दिव्य कार्य। और ऐसा कार्य करने के लिए परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं। अगर परमात्मा इस दुनिया में कभी आए ही ना हो, हमें मिले ही ना हो, तो हम उनको क्यों याद करते? जरूर उन्होंने आकर हमें सुख दिया है, हमें भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनाया है, हमारा कल्याण किया है, तब तो हम उसको याद करते हैं। तो परमात्मा सृष्टि पर कब आते हैं? कब आते? भारतवासी सभी जानते हैं कौन सा श्लोक बोलते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यः। हर भारतवासी जानते हैं जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है, अधर्म अति फैल जाता है, तब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। जानते हैं ना सभी? मेरा आपसे प्रश्न है, अति धर्म ग्लानी कब होती है? किस युग में होती? कलयुग में। अति धर्म ग्लानी का समय कलयुग अंत का समय, इसलिए कलयुग अंत, सतयुग आदि के संधिकाल संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। सृष्टि का खेल चार स्टेज में चलता है, जिसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग कहते हैं। परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं। सोचिए ना, युगे युगे परमात्मा आते तो कलयुग कैसे हुआ? फिर परमात्मा ने क्या किया? कर युगे युगे परमात्मा नहीं आते हैं। हर कलयुग के अंत, सतयुग आदि के संधिकाल संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। और हम चित्र में देखिए, कलयुगी एक तरफ नरक लिखा है, एक तरफ स्वर्ग लिखा है। कलयुगी पतित मनुष्यात्माओं को परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। बीच में आप देखिए, ये ज्ञान यज्ञ बताया गया है। परमात्मा आकर द्रव्य यज्ञ, मटीरियल यज्ञ नहीं रचते हैं। वो खुद ही मटीरियल नहीं है, वो खुद ही निराकार। वे आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं। जिस ज्ञान और योग की शक्ति से हमें खुद की बुराइयों को स्वाहा करना, खुद की बुराइयां हम स्वाहा नहीं करते हैं और हम जौ घी तिल होमते रहते। हमें खुद की कमजोरियां, बुराइयां, गंदी आदतें, बुरे चरित्र खत्म कर दे, इसके लिए परमात्मा ज्ञान समझाते हैं। तो बीच में संगम युग दिखाया है, स्वयं निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्रह्मा कुमार कुमारियों को तैयार कर ज्ञान यज्ञ रचते हैं। आप सभी इसी ज्ञान यज्ञ में आए। भाइयों और बहनों, आप सबको यहां आमंत्रित करके हमें यही परमात्मा संदेश आपको देना है कि वर्तमान समय ही अति धर्म ग्लानी का समय, कलयुग अंत का समय, चक्र के नियम अनुसार कलयुग के बाद सतयुग का समय है। इसलिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के संधिकाल संगम युग में परमात्मा आते हैं और हमें पतित से पावन बनाते हैं। परम पुरुष परमात्मा आकर हमें उत्तम पुरुष नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाते हैं। समय की पुकार है, ये महापरिवर्तन का समय है, स्वयं परमात्मा का आदेश है, पवित्र बनो, योगी बनो। जो आत्माएं अभी वर्तमान जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे, वे ही सतयुगी दुनिया में जाने के अधिकारी बनेंगे। कौन कौन बनना चाहेंगे? अगर भगवान से सच्चा प्यार है तो हमें अपने इस वर्तमान जीवन को पवित्र योगी बनाना है और सतयुगी दुनिया लाने के लिए हमें निमित्त बनना है। ये है ब्रह्मा कुमारी इसका कार्य है। कई सोचते हैं ये भक्ति नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। हम तो लक्ष्य रखते हैं हमें अपने पूर्वज देवी देवताओं जैसा दिव्य बनना है। सिर्फ पूजा करके खुश नहीं होना है, हमें स्वयं ऐसा दिव्य बनना है। और ऐसा दिव्य कार्य करने के लिए परमात्मा सृष्टि पर आए हैं। ब्रह्मा तन में दिव्य प्रवेश कर हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल सत्य ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान ब्रह्मा का नहीं है, ब्रह्मा कुमारियों का नहीं है, ये ज्ञान दाता स्वयं परमात्मा है। हम तो निमित्त बने हैं सेवा के लिए। और लास्ट बात, परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? जरूर परमात्मा इस दुनिया में नहीं रहते। कल प्रथम लेसन में आपने समझा कि ये दुनिया हमारा भी घर नहीं है, हमारे लिए भी यह दुनिया कर्म क्षेत्र है। हम आत्माएं भी इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं। हमारे लिए भी ये कर्म क्षेत्र है, तो परमात्मा का घर कैसे हो सकता? हम आत्माओं का असली घर परम धाम है। हमारे पिता परमात्मा का भी असली घर परम धाम है। इसलिए तो हम कहते हैं ऊपर वाला। जब परमात्मा को याद करते हैं, हमारी बुद्धि और नजर कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। कहते हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है। कोई गुनाह करके, झूठ मूठ करके इस दुनिया की कोर्ट से छूट जाते हैं, तब भी लोग क्या कहते हैं कि यहां तो झूठ मूठ करके तुम छूट गए, ऊपर वाले की कोर्ट से नहीं छूटोगे। कहते हैं कि नहीं कहते? हम गाते हैं, ऊंचे ते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा काम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा धाम। तो परमात्मा इस दुनिया में व्यापक नहीं है, वो परम धाम के निवासी है। दुनिया में भी बाप और बच्चों का असली घर एक ही होता है कि अलग अलग होता है? एक ही होता है ना, बाद में अलग अलग होते हैं। असली घर एक ही होता है। हम आत्माओं का और हमारे पिता परमात्मा का असली घर एक ही है, परम धाम, जो इस भौतिक जगत से दूर, पांच तत्वों से भी पार, सूर्य चांद सितारों से भी परे हैं, जहां अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है। पांच तत्वों से भी परे ये छठवां अति सूक्ष्म लाल प्रकाश तत्व है, जिसमें हम ज्योति बिंदु आत्माएं, परम ज्योति बिंदु शिव बाबा निवास करते हैं। ये है परमात्मा का सत्य परिचय, जो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम सभी आत्माओं को दिया है। ऐसे कल्याणकारी प्यार के सागर, सुखदाता, हमारी जीवन नैया को पार लगाने वाले हम आत्माओं के अविनाशी साथी पिता परमात्मा को बताइए, हमें कितना याद करना चाहिए? कितना याद करना चाहिए? पर क्या हम इतना याद करते हैं? नहीं करते हैं। देहभान में आकर देह के मित्र संबंधियों में ही बुद्धि लगाकर बैठे, सुखदाता परमात्मा को भूल जाते। इसलिए पहला पाठ आत्मा का परिचय दिया गया, ताकि हम आत्मनिश्चयी बने, तो पिता परमात्मा को भी सहज निरंतर याद कर सकेंगे। तो हम सभी बहुत प्यार से उस पिता की याद में बैठेंगे, सभी व्यवस्थित बैठ जाइए, अलर्ट होके बैठिए, कमर सीधी करके बैठ। अपना डायरी, पर्स, फाइल, हैंडबैग साइड में रख दीजिए, नीचे रख दीजिए, हाथ में गोद में लेके ना बैठे। सभी एक दो से अलग अलग होकर बैठे, टच करके ना बैठे। काफी कुर्सियां खाली हैं, आराम से बैठिए। आंखें खुली रखें, उन्नत मस्तक रखें, भक्ति में आंखें बंद कर सिर झुकाकर परमात्मा की याद में बैठ। जब हम कहते हैं परमात्मा की याद में बैठेंगे, लोग आंख बंद कर सिर झुका कर बैठते। परमात्मा को याद करना कितना श्रेष्ठ कार्य है। हमें खुशी से, उन्नत मस्तक से उस पिता को याद करना। सिर झुकाना कब पड़ता है? कोई गुनाह करते हैं तो सिर झुका कर बैठते। हमें बहुत गर्व से पिता परमात्मा की याद में बैठना है कि हम उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। उस निश्चय खुशी से हमें याद में बैठना। आंखें नेचुरल खुली रखें। आंख बंद करके बैठते हैं फिर नींद करते रहते हैं। हमें योग में सोना नहीं है, जागृत रहना। लोग आंख इसलिए बंद करते हैं कि आंख खुली होगी सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए आंख बंद करके बैठते हैं। पर अनुभव क्या है, रिजल्ट क्या है? क्या आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है? सच बताइए, भटकता है ना? क्योंकि हमने बाह्य आंखें बंद कर दी, मन की आंखें तो घूम रही है। क्यों नहीं बाह्य आंखें खुली रखें, मन की आंख परमात्मा के प्रति फोकस करें? अगर मन बुद्धि परमात्मा चिंतन में मग्न है तो आंखें खुली हो, हजारों बैठे हो तो भी मन नहीं भटकता। क्यों नहीं हम अभ्यास ही ऐसा करें, आंखें खुली हो, मन से परमात्मा की चिंतन करें, प्यार से उनसे बातचीत करें। हम अपने माता पिता को, हम अपने प्रिय को कैसे याद करते? बस ऐसे ही हमारे अति प्रिय पिता परमात्मा को याद करना है। मैं कमेंट्री दूंगी, गाइड करूंगी, हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन कैसे चिंतन करना है। मैं कमेंट्री द्वारा गाइड करूंगी, आपको मुख से रिपीट नहीं करना है, हमें कोई आवाज करने की आवश्यकता नहीं। मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। हमें साइलेंस में बैठकर दिल के सच्चे प्यार से मन ही मन उस पिता को याद करना है, मन में रिवाइज करना है, जो विचार मैं आपको दूं वो मन ही मन रिवाइज करिए, अर्थ समझिए, उस अनुभव में स्थित हो जाइए। हम शरीर से यहां बैठेंगे, मन और बुद्धि से परम धाम में जाएंगे। मन की आंख से, ज्ञान नेत्र से शिव बाबा को देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, प्यार करेंगे, स्थित होंगे। कुछ क्षणों के लिए आसपास की व्यक्तियों से, वस्तुओं से अलग हो जाइए। साक्षी दृष्टा बन जाइए। खुद के देहभान से न्यारे, मस्तक बीच भ्रुकुटी में अपने ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं आत्मा मस्तक में स्थित होकर इस शरीर को चलाती हूं। मैं इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की कंट्रोलर हूं। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मुझ आत्मा का असली घर परम धाम है। मैं जानती हूं मेरे अविनाशी पिता परमात्मा भी परम धाम के निवासी है। मैं मन की आंख से, ज्ञान नेत्र से, पिता परमात्मा को देख रही हूँ। मेरे अति प्रिय प्यारे शिव पिता, अनेक जन्मों से भक्ति में मैं आपको खोजती रही हूँ। आपका सत्य परिचय कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। आज आपके सत्य ज्ञान को पाकर मेरे मन का अज्ञान अंधकार समाप्त हुआ है। मुझे स्पष्ट है कि मैं कौन हूं और मेरे परम पिता कौन है। मुझे अपार हर्ष हो रहा है। जीवन का सही ठिकाना मुझे मिल गया है। प्यारे शिव बाबा, मेरा लक्ष्य अब यही है जो संपूर्ण सत्य ज्ञान आप हमें देते हैं, जिन गुणों के आप सागर हैं, जिन शक्तियों के आप अखुट भंडार हैं, वो संपूर्ण सत्य ज्ञान सर्वगुण सर्वशक्तियां मुझे भी अपने जीवन में धारण करनी है। प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, अखूट शांति के भंडार, विश्व शांति दाता है। आपकी अमर संतान मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। मैं स्वयं शांत रहूंगी, सर्वत्र शांति शांति दूत बनकर शांति फैलाऊंगी। मेरे सदा पावन सर्वशक्तिमान मीठे बाबा, आपकी याद से मैं आत्मा भी पावन बनती जा रही हूँ। मैं आपसे योग लगाती हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाती हूँ। मुझे ये ही निश्चय और नशा है, मैं आत्मा आपकी ईश्वरीय संतान हूँ। शांत हूँ, सत्य और शुद्ध हूँ। मैं आत्मा दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। ॐ शांति।